हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 29। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, आशर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आशर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्याप्येनं वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् शब्दों का अर्थ देखिए। आश्चर्यवत् यानी आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित् कोई, एनम एनम माने इस आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है, और आगे आश्चर्यवत् यानी आश्चर्य की तरह वदति, वदति माने कहता है, तथैव जिस प्रकार निश्चय ही च यानी भी अन्य दूसरा, और आगे आश्चर्यवत् यानी आश्चर्य से च एनम इसको यानी इस आत्मा को अन्य दूसरा श्रुणोति सुनता है। ठीक है, कुछ इसको आश्चर्य से देखते हैं, कुछ इसको आश्चर्यजनक कहते हैं, और कुछ आश्चर्य की तरह सुनते हैं, और आगे श्रुत्याप्येनम श्रुत्वाप्यनि सुनकर भी अपि मन भी एनम इस आत्मा के विषय में वेदन कश्चित् कुछ लोग उसके बारे में सुन भी लेते हैं, फिर भी वेदन कश्चित् यानी जानता न मन कभी नहीं इसके बारे में, च एव कश्चित् उसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं पता, यानी कि उसके बारे में सही तरह से अगर सुन भी लेते हैं आश्चर्य वाला, लेकिन फिर भी सुनने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आत्मा होती कैसी है। अनुवाद देखिए, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इन अद्भुत शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साघुजातम् सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानौ सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मा के विषय में बहुत बहुत बताया। पहले आत्मा के विषय में बताया कि उसकी क्वालिटीज क्या है। अजो नित्य है शाश्वत हो यम पुराणों, ये अजन्मा है नित्य है शाश्वत है और उसको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन फिर अर्जुन को बोला यदि तुम्हें 26 में कहा अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वामन्य सीमृतम तथापि त्वं महाबाहु नयनम शोचितम, तुम्हारी फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रही है ना वो बात कि कैसे इटर्नल हो सकती है। अगर तुमको ऐसा लगता भी है कि ये जन्म लेता है और मर जाता है तो भी फिक्र करने की जरूरत क्या है, शोक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्माद् अप्रहार्ये थे न तो हम शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है, तो फिर अपरिहार्य कार्य में तुमको शोक करने की क्या जरूरत है। जिसको कोई टाला नहीं जा सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। और आज भगवान हमें बता रहे हैं कि अलग अलग टाइप के लोग आत्मा के विषय में कैसा समझते हैं, यानी कि उसको कैसा अनुभव करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने सिर्फ एक ही शब्द को बार बार दोहराया है। क्या कहा? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः श्रोति। यानी कि तीनों नारे में एक शब्द बोला आश्चर्य, यानी आश्चर्य की तरह। आश्चर्य का क्या मतलब होता है? जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना अमेजिंग, यानी कि जिसको हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसके विषय में हम खुद देख के हैरान हो जाएं, इसके लिए ऐसा कहा आश्चर्य हो जाए। जैसे आपको बहुत आश्चर्य, तो श्री प्रभुपाद जी उसका अनुवाद बताते हैं, सम लुक ऑन द सोल इज अमेजिंग, कुछ उसको देखते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, कुछ उसको आश्चर्य की तरह अमेजिंग की तरह देखते हैं। सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, कुछ उसके विषय में, वदती का मतलब होता है बोलते हैं, कुछ उसको देखते हैं अजीब और गरीब लगता है देखने में, देखते कैसे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, यानी कि देखने में आती नहीं है ना, इतनी छोटी है कि किसी माइक्रोस्कोप से भी दिखती नहीं है, तो फिर वो देखेंगे कि ऐसा कैसे है, और कुछ उसके बारे में बयान करते हुए जब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उनको अजीब लगता है, अमेजिंग लगता है। एंड सम हियर ऑफ हिम इज अमेजिंग, कुछ सुनते हैं जैसे शास्त्रों के अनुसार, या फिर साधु महात्मा जब कोई भी भक्त उनको बता दे आत्मा के विषय में, तो उनको बहुत ऐसा लगता है अच्छा ऐसा। और आगे श्रीलाभ जी बहुत अच्छी बात बता रहे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्रुत्वा प्येनम वेदन चैव कश्चित, कुछ उसके बारे में सुन लेते हैं, व्हाइल अदर्स इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम कैनॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, कि उसके बारे में भले सब कुछ बता भी दे रहे हैं, जैसे अब तक भगवान ने बता दिया ना आत्मा के विषय में सब कुछ, लेकिन भगवान को पता है जिसने जिस जिसने ये यहाँ तक भगवद गीता पढ़ी होगी ना, उसके क्या विचार होंगे। पहले तो भगवान ने बताया उसकी कि वो साइज कितनी है, बालक गृह शतभागस्य के शतदा कल्पितस्य, के बाल के अग्रभाग के हिस्से के 10,000 हिस्सा जो है वो आत्मा का नाप है। तो बड़े से बड़ा जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो पता है कैसे दिखाता है किसी भी चीज को, जो छोटी चीज होती है इसको 1,000 गुना बड़ा करके दिखाता है, फिर आपको दिखती है वो 1,000 गुना बड़ा। लेकिन बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप भी आत्मा को नहीं दिखा सकता, यानी कि देखने के लिए वो बहुत आश्चर्यजनक है कि देखा ही नहीं जा सकता। अब जो इसको पढ़ेंगे कि इसका इतना साइज है, तो उसके लिए अमेजिंग होगा ना कि कैसा इतना छोटा साइज है। और कोई आश्चर्यवत वदाय आश्चर्यवत वदती तथा वदती मतलब कहते हैं, अब क्या क्या कहते हैं, अब आत्मा इतनी छोटी और चला रही इतने बड़े शरीर को, है ना, इतनी छोटी सी आत्मा, और उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात, उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात क्या है कि वो इतने बड़े हाथी के शरीर को चलाने वाली भी इतनी ही छोटी आत्मा, और एक छोटे से अमेबा को या छोटी सी चींटी, जो एक क्षुद्र चींटी जो एक एटम पर ना होती है, उसको भी चलाने के लिए वही आत्मा, मतलब आत्मा की साइज ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर थोड़ी बड़ी किसी के अंदर थोड़ी छोटी, ये शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़े से बड़ा शरीर भी इतनी ही साइज की आत्मा से चलता है और छोटे से छोटा। तो सुनने वाले आश्चर्यवत तथैव वदति तथैव, बोलते भी इस तरह, और आश्चर्यवत चैनम अन्य श्रुणोति, तो जब कोई इस तरह की बात आत्मा के विषय में सुनता है कि इतनी छोटी है और चला रही है, और वो चला रही है सारे शरीरों के लिए, मतलब इतनी छोटी आत्मा वो किसी भी शरीर के अंदर डाल दी जाती है, तो वो शरीर ये नहीं सोचता है, या फिर उस शरीर को ऐसा नहीं लगता कि इतनी छोटी आत्मा, थोड़ी बड़ी आत्मा होती तो मेरा शरीर जो है वो सारे तरीके से काम करता, नहीं, पूरे पूरे के पूरे शरीर को चेतना प्रोवाइड की जाती है उसी आत्मा के जरिए। तो जो इस तरह से सुनता है तो उसको आश्चर्य लगता है कि अच्छा ऐसा। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण ने जो लास्ट लाइन बताई ना, वो कितनी अच्छी है, श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित, कि कुछ लोगों ने यहाँ तक भगवद गीता पढ़ ली, मैंने आत्मा के विषय में सब कुछ बता दिया, लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, यानी कि सब कुछ सुन भी लिया इसके विषय में कि आत्मा इतनी छोटी है, आत्मा जन्मा है, नित्य है, उसको नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्याप, न शोषयति वा मारुतः, अच्छेदोऽयम् अद्यायोऽयम् अक्लेदोऽयम् अशोष एव नित्यः सर्वगतः रचयो अयम् सनातन। ये सब कुछ भगवान ने आत्मा के विषय में बताया, और भगवान को पता था कि कुछ लोग ऐसे होंगे, श्रुत्वा प्येनम वेदन चैव कश्चन, कैसे करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, आत्मा को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वेदना चाहेगा उसको, कुछ भी समझेंगे नहीं आत्मा को, वापस वही अपनी घिसी पिटी बात पे अटके रहेंगे कि मैं कैसे अपने शरीर को खुश करूं, अपनी देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, कुछ आत्मा के विषय में अमेजिंग जैसा आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ देखते हैं उसको आश्चर्य से, और कोई कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं आत्मा के बारे में, कितना भी बता दो कुछ समझ में नहीं आता उनको। वही बेसुरा गाना, इंद्र तृप्ति कैसे करूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे नए नए कपड़े पहनूं, कैसे मैं अपने आप को, अपने शरीर को अपना आप समझकर कैसे मैं इसको सुखी करूं, बस वही इनका रिकॉर्ड वही पुराना बजता रहेगा। कुछ समझ में आएगी नई बात कि मैं कैसे आत्मा हूं, आज आत्म साक्षात्कार का अनुभव करके कैसे अपनी आत्मा को संतुष्ट करना है उसके विषय में कुछ नहीं सोचेंगे। भगवद्गीता का पाठ रखाएंगे, भगवद्गीता के विषय में दूसरा अध्याय पढ़ लेंगे सांख्य योग, लेकिन कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, अभी अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं तो ऐसा ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। यानी कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो गीता है ना वो उपनिषद है, उपनिषदों का सिद्धांत है। इसके अंदर ऐसे जितने 108 उपनिषद है ना, उसमें एक उपनिषद को श्रीमद् भगवद गीता है, और लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता एक नहीं है, ऐसा है वो सारी 108 उपनिषदें हैं, उनका निचोड़ है। जैसे हम कैसे गाते हैं, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदनम पाठो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, के भगवान ने सारी उपनिषदों को क्या किया, गाय बना दिया। और भगवान का काम क्या है, गाय को धोना। ग्वाले है ना, जब भी नंद बाबा के यहाँ पर रहते थे तो गायों को धोते थे, और जब कुरुक्षेत्र में आए तो समस्त उपनिषदों को धोना शुरू कर दिया, और धोया उनको गाय बनाकर दोहा, और उसमें से जो रस निकला, जो गौ रस निकलता ना दूध, वो है श्रीमद् भगवद गीता। यानी सारे उपनिषदों का सार है इसके अंदर। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब सार यानी कि सारे उपनिषदों जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक होंगे वो इसके अंदर होने चाहिए। तो इसलिए अगर उस उपनिषद में, कौन से उपनिषद में, कठोपनिषद में 1.2.7 में ऐसा ही श्लोक है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है उपनिषदों का सार है तो वो होना चाहिए। क्या श्लोक है,
श्रवणयापि बहुभ्यो न लभ्यः, श्रवणं तोपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता कुशलो सलब्धा, आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुविष्टः।
यानी कि ऐसा ही आत्मा के विषय में बताया कि कुछ आत्मा को हैरत जैसा लगते हैं, हैरत जैसा कहते हैं बहवो, कुछ उसके बारे में बोलते हैं आश्चर्य जैसा, और कुछ उसके विषय में सुनते हैं आश्चर्य जैसा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। एज इट इज इसकी ट्रांसलेशन है, तो फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि अब उपनिषदों का सार है तो यही वाला श्लोक दूसरे उपनिषद में भी है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विशाल पशु विशाल वट वृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि देखो कितनी छोटी सी आत्मा है, और विशाल पशु, सबसे बड़ा विशाल पशु जैसे हाथी हो, विशाल वट वृक्ष, वट वृक्ष कितना बड़ा होता है बताए, कोई कोई वट वृक्ष तो मीलों लंबे होते हैं, इतना बड़ा वटवृक्ष, उसके अंदर बड़े से बड़ा हाथी उसके अंदर, और एक स्थान में, एक इंच स्थान में, यानी कि एक इंच के स्थान में अगर लाखों करोड़ों कीटाणु होंगे ना, उसके एक एक कीटाणु के अंदर भी अणु आत्मा की उपस्थिति उतनी है। एक छोटे एक इंच के, अब हम तस्वीर करें, इतने एक इंच के एरिया में अगर करोड़ कीटाणु आ रहे हैं और हर एक कीटाणु के अंदर उतना ही आत्मा हो जितना एक बहुत बड़े विशाल पक्षी पक्षु या फिर एक वटवृक्ष के अंदर हो, तो हैरत की तो बात है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के सफल लिंग के चमत्कारों को नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। यानी कि अब ये अणु आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए अल्पज्ञ उसको जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, अल्पज्ञ मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो समझ नहीं सकेगा आत्मा के विषय में। क्यों? क्योंकि आत्मा की चमत्कार जो है वो चमत्कार है ना, छोटी से छोटी चीज को भी चला। अब उसमें क्या है, देखो अब चलाने के लिए एक ड्राइवर, हमें यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि हर जीव चाहे जितना भी प्रकृति के अनुसार जो भी शरीर है उसको आत्मा चला रही है। अब जैसे एक ड्राइवर होता है ना, जैसे यही बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर जैसे एक गाड़ी को चला रहा होता है, उसी प्रकार एक आत्मा उस शरीर को चला रही होती है। लेकिन एक ड्राइवर जो है वो एक टाइप की, अगर वो साइज उसकी एक ही, तो एक टाइप का गाड़ी को चला सकता है। जैसे एक ड्राइवर जो एरोप्लेन को या पानी के शिप को या ट्रेन को या फिर है ना स्कूटर को या साइकिल को, एक ही ड्राइवर इतनी कुशलता से नहीं चला सकता। जो कुशल है वो अपनी ही एक फील्ड में कि भाई इस चीज को मैं, जैसे एरोप्लेन को पायलट चलाता है, वही पायलट को आप साइकिल चलाने को दोगे ना तो उसको सही चलाना नहीं आएगी, वो एक्सीडेंट कर देगा, क्योंकि उसका फील्ड नहीं है ना दूसरा फील्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या बताया, एक आत्मा इतनी छोटी है वो सबको चला रही है तो आश्चर्य है। लेकिन अल्पज्ञ लोग जो होंगे, दुराचारी का क्या मतलब होता है, दुराचारी मतलब जिसके आचरण ठीक नहीं हो, जो गलत आचरण करता है, कौन से चार नियम का पालन नहीं करता, जो फोर प्रिंसिपल्स हैं उनको तोड़ता है, उसको दुराचारी कहा गया शास्त्र में। जो शराब पीता है, मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, अवैध संग करता है, उसको दुराचारी कहा गया। और ऐसा कहते हैं वो तो आणु आत्मा के चमत्कारों को नहीं समझ सकता और ना ही परमात्मा को समझ सकता है, भले ही उससे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझा। यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शब्द है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये जो शब्द है ना जो अब तक हम आत्मा के विषय में पढ़ रहे हैं, वो साक्षात वो बोल रहा है जिसने संसार के बड़े से बड़े प्राणी यानी ब्रह्मा जी को शिक्षा दी है। अभी हम पढ़ेंगे भागवतम में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरः। जो ब्रह्मा जी हैं, जो आदि पुरुष हैं, जिस संसार में सबसे पहले जन्म, मतलब भगवान के क्रिएशन में सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, उनको भी जिस कृष्ण ने शिक्षा दी थी, वही कृष्ण आज युद्ध भूमि में खड़े होकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो दुराचारी होते हैं ना, जो जिनके अंदर सदाचार नहीं होता है, जो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं ना, भक्ति के या धर्म के इन इस धर्म के शिखर के अंदर नहीं आते हैं, तो उन लोगों को चाहे भगवान स्वयं भी आके समझाए ना, उसको समझ में नहीं आएगा। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं इस आत्मा को। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण, क्योंकि अब हम लोगों को, क्योंकि इससे बने हुए ना, जिस शरीर के साथ, ये पंच तत्व के साथ बने हुए, तो हमको यही चीजों से बनी हुई चीजें नजर आती हैं और उसी को समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि इतनी है कि हम भौतिक चीजें, जो भौतिक है ना, ये मटेरियल चीजें जो है, उनके विषय में हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा उतना लघु बन सकता है। अब वो क्योंकि आत्मा इस संसार के इन मटेरियल चीजों से बनी हुई नहीं है, वो तो आध्यात्मिक चीजों से बनी हुई है, आध्यात्मिक अंश है भगवान का, तो फिर वो ये लोग समझ नहीं सकते ना कि इतनी छोटी सी चीज है, वो इतने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चीज को या वस्तु को कैसे सारा संरक्षण या फिर चेतना प्रोवाइड कर रही है, तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो केवल मटेरियलिक चीजों में कार्य करती है। उनकी बुद्धि इतनी होती है कि वो भौतिक चीजों को ही समझ सकती है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। क्या आश्चर्य, इतनी छोटी आत्मा है, संरचना मतलब इसकी हाइट इतनी छोटी है और उसकी हालत क्या है, इतना छोटा सा एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का एक कण है, इतना एक छोटा सा है और वो पूरे शरीर को पावर दे रहा है, तो उसको बहुत हैरत लगती है। आगे श्री बाबा जी बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता।
अब वो क्योंकि संसार में आने के बाद अब वो इंद्रिय तृप्ति में मनुष्य इतना गरक हो जाता है, आत्मा जो है वो हृदय के अंदर बैठी हुई है और गुण उसके जो गुणों के अनुसार वो कभी सत्व गुण में, कभी रजोगुण में और कभी तमोगुण में कार्य करते, लेकिन कार्य का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही होता है। चाहे आप किसी में भी रहकर कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि अगर कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं है तो बाकी सब कुछ इंद्रिय तृप्ति है। तो इस इंद्रिय तृप्ति के जाल में जब फंस जाते हैं तो लोग भौतिक शक्ति यानी जो माया है उसकी वजह से मोहित हो जाते हैं। माया क्या है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। ये तीन गुण भगवान कहते हैं, ये जो तीन गुणों वाली मेरी माया है ना, वो बहुत ही, उसको पार करना बहुत कठिन है। तो संसार में जब जीव आता है तो क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो माया में इस तरह फंस जाता है और मोहित हो जाता है कि उनके पास आत्मज्ञान समझने के लिए अवसर ही नहीं रहता, फिर उसको टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि माया उसको इतना अपनी ओर आकर्षित कर देती है कि वो जीव को बोलोगे ना कि देखो आप आत्माओं, किसी को भी बोलेंगे ना जो भगवान का भक्त नहीं होगा, आम लोग होंगे ना, वो बोलेंगे सारा दिन इतना मुझे काम होता है, घर लेडीज बोलेंगी इतना घर में काम होता है, बच्चों को देखना, घर को देखना और है ना खाना बनाना, कपड़े बनाना और पापड़ बनाना और इतने सारे काम होते हैं। अभी बैठ के मैं यहाँ पे बैठ के आत्मा का तत्व ज्ञान मुझे समझ में नहीं आता, ये बात मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती। और जेंट्स लोग बोलेंगे सुबह से लेकर रात तक मैं बैठ के दुकान में कमाता हूँ और अभी यहाँ पर आया हूँ तो तुम अपना आत्मा का ज्ञान शुरू कर रहे हो, छोड़ो मुझे नहीं सुनना है और मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, देखो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये माया की वजह से इतना फंसे होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान समझने के लिए अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष के पराजय के रूप में होता है। अब अगर कोई इस संसार में आकर आत्मज्ञान के अतिरिक्त सारे कार्य करता है तो भी उसका परिणाम दुष्परिणाम ही निकलता है। श्रील प्रभुपाद जी, क्यों परिणाम दुष्परिणाम निकलता है? क्योंकि अंत बला तो सब बला है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आत्म ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष की पराजय के रूप में, कि जीवन की पराजय क्या है कि तुम्हें इस दुखों वाले एरिया से निकलने यानी ये जो कुंठा जगत है ना उससे निकलने का कोई उपाय ना मिला हो। सारी जिंदगी अगर आपने स्ट्रगल की हो लेकिन फिर वापस ही तुम यदि जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय है। जिंदगी की जिद्दोजहद, जीवन संघर्ष, तुमने कितना ही ज्यादा भले अच्छे तरीके से अपना लाइफ जो है वो गुजारा हो, लेकिन यदि तुमने अपने जीवन में तुमने सबसे बड़ी सक्सेस क्यों ना हासिल कर ली हो, सबसे बड़ी पोस्ट क्यों ना तुमने ले ली हो, लेकिन यदि तुमने अपने जीवन में जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय नहीं ढूंढा तो फिर वापस से तुम्हें इस दुखों भरे जीवन में आना पड़ेगा, यानी तुम्हारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई नहीं। फिर यही मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय है कि अना हम इस संसार में आके बाकी सारी चीजें खोजने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी जिंदगी हम कोशिश करते रहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी पराजय है कि हम जीवन संघर्ष में सबसे बड़ा पराजय क्या है कि हम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज कर निकालना चाहिए। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा एजुकेशन हासिल कर ले, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती है भौतिक तत्वों की वजह से, ये माया की वजह से वो इतना फंस जाता है कि उसको इतनी बात का ख्याल तक नहीं आता। यहाँ पर बोलते उन्हें इसका कोई अनुमान ही नहीं होता, उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में सोचना चाहिए और अपने समस्त दुखों का इटरनल हल निकालना चाहिए कि ऐसा हल हो कि दोबारा कभी दुख आए नहीं। ये दुख आया है, हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, ये दुख आया है इसको कैसे खत्म किया जाए, है ना। ये लेकिन ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा कि दुख कभी ना आए, या ऐसी जगह पर हम ट्रांसफर हो जाए जहां पर दुख नाम की कोई चीज ना हो। तो ये है ना मेन तो प्रॉब्लम्स का हल। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो माया के आवृत हो जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगे रहते हैं, उनको ये आत्मा वाली बात समझ में आती नहीं है, उनको ख्याल ही नहीं आता कि दुखों का एक प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु अब किंतु यहाँ पर वापिस लिख लिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हाँ ठीक है अब ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए कुछ आत्मा के विषय में सोचना प्रारंभ करते हैं ना, कि हाँ आत्मा के विषय में सोचते हैं, ये जीवन तो वैसे भी आज है कल नहीं है। तो किंतु क्यों लिखा, श्री प्रभुपाद ने बोला किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं, यहाँ पर आके फंस गए वापस से माया ने चक्कर, माया के चक्कर में। वो ये नहीं सोचते कि परमात्मा जो है उसका अंश है भगवान, ये आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है, यहाँ तक उधर तक सोच नहीं सकते। अब उनको दुर्भाग्यवश ऐसे तथाकथित गुरुओं का साथ मिलता है जो उन्हें बताते हैं कि आत्मा, यहाँ पर ना आत्मा तथा पर अणु आत्मा एक समझ बैठते हैं कि वो एक ही है, आत्मा सुपरमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। शीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोग कितने लकी हो कि शीला प्रभुपाद जैसे परम ज्ञानी गुरु जो कि आपके हित के विषय में परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्य उनके संबंध और समस्त विस्तार को सही ढंग से समझाया। ऐसे गुरु पाना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसे व्यक्ति खोज करना बहुत कठिन है जो आपको परमात्मा आत्मा उनके अलग अलग कार्य उनके संबंध सबके विषय में, जो कि हमने श्री प्रभुपाद के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, इसी पता है क्या एज इट इज जो कुछ श्री प्रभुपाद ने बताया वो एज इट इज जो भगवान ने अर्जुन को बताया वो उसमें किसी का उन्होंने अपना कोई फायदा नहीं सोचा, ना अपने फायदे के लिए कुछ निकाला और ना ही अपने फायदे के लिए इसके अंदर कुछ डाला, जो भगवान ने बताया एज इट इज बताया। इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते इससे भी अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, आत्मा के विषय में सोचकर उससे पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके, हर पहलू से आत्मा को सही तरह से उसको समझ सके कि आत्मा के विषय में सब कुछ उसको पता हो, ये ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत। अभी देखो हमारे पास क्या है, हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, उसमें आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, एकदम क्लियर स्टेटमेंट 15.7 भगवान ने क्या कहा, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षसि, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो जीव है जो आत्मा है मेरा अंश है और मेरा सनातन अंश है, लेकिन क्योंकि वो मन तथा अपनी पांच इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है ना, इस संसार में आया है तो संघर्ष कर रहा है अपनी इंद्रियों के साथ, लेकिन वास्तव में वो क्या है, मेरा अंश है और अंश का कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो भगवान बता रहे वो फंसा हुआ इसलिए है क्योंकि अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, मन और इंद्रियों के द्वारा जो है वो फंस गया है, लेकिन वास्तव में वो मेरा अंश है तो उसे मेरी सेवा करनी चाहिए, उसकी मुक्ति का राज मेरी सेवा में है, भले वो अपने को कितना ही अपने को खुश करने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी संतुष्टि तभी है जब वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है। और भगवान के बाद में मतलब ये तो आत्मा के विषय में बताया, और परमात्मा के विषय में क्या बताया, परमात्मा के विषय में बताया 13.23 में भगवान ने उपदिष्टानुमन्ताश भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर, कि इस देह में एक परम पुरुष है जो को परमात्मा कहलाता है, उसका कार्य क्या, उपदृष्टा अनुमंता, वो देखता है और वो फिल्म रिकॉर्ड करता है और फिर आपको सहायता भी करता है वो कार्य करने के लिए, और वास्तव में क्या है वो भोगता है जो अंदर परमात्मा बैठा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा मनुष्य जो कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सारे पहलुओं को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाए वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और आप सबका सौभाग्य है, हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हमको मिले हैं जो हमें इस चीज हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये बताया ना कि देखो इससे अधिक कठिन है कि ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से जीवन का सफल होना इसी बात पर निर्धारित करता है कि हम आत्मा के विषय में क्या समझे हैं, क्योंकि यदि हम आत्मा को नहीं समझेंगे खाली शरीर को, तो शरीर को भले कितना ही उसके विषय में समझो 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 समझो, अंत में क्या होगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मर जाएगा, राख हो जाएगा, जल जाएगा, फिर उसके विषय में इतना ज्यादा स्टडी करके क्या फायदा हुआ। पराजय निश्चित है यदि केवल इन भौतिक स्थूल चीजों के विषय में ही सोचते रहेंगे और आध्यात्म या आत्म साक्षात्कार का अगर हम ख्याल नहीं करते हैं तो अपने जीवन को सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे बहुत ही सुंदर बात, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए। यानी कि परम प्रमाण जो श्री प्रभुपाद ने बताया है इज इट श्रीमद् भगवद गीता है, और उसी को एक्सेप्ट करना है। दूसरे अन्य मत जो भी हैं, जो चाहे भले कुछ भगवान कुछ लोग भगवद गीता का अपने अपने तरीके से बताते हैं, कृष्ण को निकाल देते हैं और बोलते हैं ये कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण की बात नहीं है, ये कृष्ण के अंदर जो है वो बोल रहा है कि मेरी शरण में आओ। नहीं, जो श्री प्रभुपाद ने बताया है वो एज इट इज है। तो जैसे कोई है ना, जैसे कोई भी चीज हम निकालते हैं ना, देसी घी या देसी प्रोडक्ट कोई अगर निकलता है तो फिर उसमें क्या लिखा होता है कि इस तरह का जो हमने ये जो चीज निकाली है ना, जो प्रोडक्ट है हमारा एकदम परफेक्ट है। अब जो नकली है ना उसके आप उससे खबरदार रहना, नक्कालों से होशियार। और उसके बाहर लिखा जाता है कि हमारा जो मोनोग्राम है ना उस पर लिखा होगा ये लिखा होगा। तो हमारा जो एज इट इज है श्री प्रभुपाद ने लिखा है ना यथारूप, वो जो लोगो जिसके ऊपर है ना श्रीमद् भगवद गीता का, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो एज इट इज भगवद गीता है उसको ही आपको है ना एक्सेप्ट करना है। और जो अलग अलग मत हैं, जो दूसरे मतों की इसी चीज को तोड़ मरोड़ के जिन्होंने अपने अपने मफाद के लिए अपने अपने फायदों के लिए जिसने बताया है, तो उसकी वजह से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की। आप श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही एक गुह्य बात सीक्रेट बात बता रहे हैं कि किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। कि अब अगर आप चाहते हो कि हमें एज इट इज ज्ञान प्राप्त हो, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का हमें सही सही पता चले, ऐसा नहीं कि हम किसी के दूसरे तीसरे जितने भी मत हैं उसमें उलझने से बच जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहो और वो नहीं। उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी ताकि आपको एज इट इज ज्ञान प्राप्त हो सके, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.19 में बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि ये जो मेरी शरण में कोई आता है ना, मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड गॉड हेड, अगर कोई समझता है परम पुरुष भगवान समझकर मेरी शरण में आ जाता है तो इतना सरल नहीं है। करोड़ करोड़ जन्मों की तपस्या है जिसकी वजह से वो ऐसा समझ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, वरना यही भगवत गीता समझकर, यही भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ कृष्ण को ब्रह्म समझ देते, कुछ भगवान को ब्रह्म समझ देते हैं, गीता से कृष्ण को निकाल देते हैं, कुछ भगवान को परमात्मा समझ देते हैं, गीता में से साक्षात कृष्ण को निकाल देते हैं। लेकिन गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई है और वही कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर किसी के सामने आता नहीं हूँ, मैं क्यों बताता हूँ, सामने क्यों आता हूँ, क्योंकि अर्जुन भक्तों से मैं सखा चेते, तो मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, मैं प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें ये गूढ़ बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें श्री रूपा जी बता रहे, कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार तभी किया जा सकता है जब बहुत बहुत जन्मों की तपस्या करते हो। लेकिन ये बात सरल भी हो सकती है। कैसे? श्री रूपा जी बोलते हैं, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहितु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो यदि शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए, यानी तपस्या से क्या मिलेगा, शुद्ध भक्ति की कृपा मिलेगी बस, और कृपा जब तक नहीं मिलती है तब तक तपस्या। तो शुद्ध भक्त इतने भगवान श्री भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने कृपामय होते हैं कि वो आपकी तपस्या को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव को देखते हैं और लुटा देते हैं अपने सारे जीवन की तपस्या। एक शुद्ध गुरु ने जो पूरे जीवन में अपने पूरे जीवन काल में जितना कुछ सीखा होता है वो एक भक्त को जो उसकी शरण में आता है उसे उसी क्षण दे देते हैं। जैसे श्री रूपा जी ने अपने जीवन में जितना कुछ बताया, जितना कुछ सीखा, जितना कुछ अध्ययन किया, वो अपने शिष्यों को लुटा देते, भाई सब कुछ छोड़ दो, महामंत्र का जप, चैंट एंड बी हैप्पी, बस आपको भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की शरण में आना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान योग ध्यान योग के जितने भी है साधन वो सब श्री रूपा जी में इतना सरलता से, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, भटकते भटकते कोई भाग्यवान जीव होता है, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति। अब कृष्ण की खाली कृपा से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, गुरु का होना ज्यादा जरूरी है। तो जब शुद्ध गुरु कृपा करते हैं तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद के सानिध्य में रहकर श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, और संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण जितने भी तथ्य हैं, जितने भी रहस्य हैं, उनके विषय में भगवान आहिस्ता आहिस्ता हमें सबको समझाएंगे। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।